समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे। अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से भी हम जानेंगे कि उनके पास आज हमारे लिए क्या खास जानकारी है, और खेल गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी। इसके अलावा प्रोग्राम में और कुछ भी बहुत खास होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम के इस अंक के साथ मैं हूं सरफी रोजी और मेरे साथ हैं अनुजा कुमार। नमस्कार अनुजा।
नमस्कार, हेलो एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून सरफिरोजी। सरफिरोजी, द एनुअल फैमिली रीयूनियन टाइम इज नियर द कॉर्नर एंड वी आर ऑल बिजी विथ आर प्रिपरेशंस फॉर द अपकमिंग फेस्टिविटीज लाइक दिवाली, भाई दूज एंड देन अपकमिंग छठ
पूजा। जी,
द जॉय एंड हैप्पीनेस दीज फैमिली बॉन्डिंग गिव्स अस इज अनपैरेलल्ड, ऑफन आउटशाइनिंग द साउंड ऑफ फायर क्रैकर्स। Don't let the technology replace real connections. Go out, meet your friends and family members and keep the importance of personal connections alive. Do
जी,
you agree
बिल्कुल,
with me,
बिल्कुल अनुजा, मुझे लगता है कि त्योहार ऐसा समय होता है जब आप मोबाइल की स्क्रीन से हटकर आपस के जो असली कनेक्शन होते हैं उन्हें एक्सप्लोर करते हैं, अपने रिश्तों को एक्सप्लोर करते हैं।
वेरी मच। एंड विद दिस पॉजिटिव नोट ऑफ द फेस्टिव सीजन, लेट्स बिगिन आवर परिक्रमा टुडे। फर्स्ट द न्यूज मेकिंग हेडलाइंस एट दिस आवर।
जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज ने वडोदरा में C-295 सैन्य विमान की विनिर्माण सुविधा का शुभारंभ किया।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेट्स मल्टीपल प्रोजेक्ट्स वर्थ नियरली 5,000 करोड़ रुपीज एट अमरेली इन गुजरात।
झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच जारी है।
फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी लॉन्चेस ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल फॉर राइस मिलर्स, अश्योर्स गवर्नमेंट कमिटेड टू बाय ऑल द यील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द राइस मिलर्स।
भ्रष्टाचार मुक्त समाज के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आज से पूरे देश में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है।
एंड इन स्पोर्ट्स, इंडियन ग्रैपलर्स एंड अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप कैंपेन विथ 9 मेडल्स। And now time for a segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. This must have surely reminded you of the Tom and Jerry cartoons.
जी बिल्कुल, मुझे याद नहीं कि आखिरी बार ये कार्टून मैंने कब देखा था, पर बिल्कुल उस बचपन की यादें ताजा हो गई हैं जब हम देखा करते थे टॉम एंड जेरी कार्टून।
Absolutely right. And so today we are talking about International Animation Day. On 28th of October every year, the world celebrates International Animation Day to honor the power of animation to unite and inspire. The day was established by the International Animated Film Association, which is commonly known as ASIFA, in 2002 to illustrate the impact of animation on entertainment and education.
जी अनुजा, और जैसा कि आपने बताया कि एनिमेशन का प्रभाव सिर्फ एंटरटेनमेंट पर नहीं पड़ा है बल्कि एजुकेशन में भी इसने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है, और यहीं से हम इस टर्म से भी रूबरू हुए जिसे हम कहते हैं इंफोटेनमेंट, यानी एंटरटेनमेंट के जरिए इंफॉर्मेशन भी हासिल करना। और आसिफा ने 2002 में इस दिन की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस को प्रमोट करना है।
एनिमेशन इज एक्सटेंसिवली यूटिलाइज्ड अक्रॉस एनिमेशन इज एक्सटेंसिवली यूटिलाइज अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स विद इन द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एनकम्पसिंग टेलीविजन, प्रिंट मीडिया, द इंटरनेट एंड इवन मोबाइल डिवाइसेज। एनिमेशन इन मल्टीमीडिया हैज इमर्ज्ड एज अ क्रूशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर ब्रांड्स टू effortlessly communicate their message through the use of animated images or explainer videos in the current digital era. Animation facilitates comprehension of the topic. We all know what is difficult to explain to kids in information in words is sometimes best explained by animation.
जी अनुजा, और कहा जाता है कि बच्चों का मन बहुत चंचल होता है, यानी कि उनका ध्यान एक जगह आकर्षित करना अक्सर मुश्किल हो जाता है, तो एनिमेशन के जरिए हम अपने मैसेजेस को और दिलचस्प बना सकते हैं, खासकर बच्चों के लिए, क्योंकि उन्हें अगर सिर्फ ऑडियो या सिर्फ टेक्स्ट के जरिए किसी चीज को समझाया जाए तो उनका ध्यान उतना अटेंशन उस चीज पर नहीं जाएगा, और एनिमेशन के जरिए हम अपनी मैसेजेस को आसानी से समझा सकते हैं, क्योंकि अनुजा कहा जाता है कि एक फोटो, एक तस्वीर जो होती है वो हजार शब्दों के बराबर होती है, तो जी एनिमेशन, फिर एनिमेशन तो कई मूविंग इमेजेस का मेल होता है, और ऐसे में हम इनके जरिए कम समय में कम स्पेस लेकर अपनी बात को और ज्यादा क्लियरली अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं.
राइट. एंड ऑफ कोर्स एनिमेशन इज इम्पोर्टेंट सर फिरोजी, बिकॉज इट मेक्स अस to be able to tell our stories and communicate emotions and ideas in a unique, easy to perceive way that both small children and adults can understand. Because animation has helped connect people throughout the world in a way that sometimes writing and live action films also have not been able to. Also, like brands and various companies incorporate animation in their advertisements and marketing videos to engage more eyes and gain more popularity. A brand that uses animation can convey their message or explain a complex concept in a way that it becomes visually appealing and it is also cost effective.
जी अनुजा, cost effective animation इसलिए हो जाता है क्योंकि ये अपने आप में एक independent art है, इसे किसी तरह के audio या text के support की जरूरत नहीं पड़ती, और इसकी जो target audience है वो सिर्फ बच्चे नहीं है बल्कि सभी उम्र के लोग इसे entertainment का जरिया मानते हैं. और अनुजा, हम ये मान सकते हैं कि animation ने हमारी imagination को एक shape दिया है. एनिमेशन के जरिए आप अपने दिमाग में आ रही हर इमेज को क्रिएट कर सकते हैं, और डिज्नी और मार्वल जैसी पूरी इंडस्ट्रीज ही एनिमेशन और वीएफएक्स के बल पर चल रही हैं।
Yes, during the ancient age also, storytelling was the only leisure for people in the form of cave paintings that depicted early shadow puppetry, and that is how the roots of animation were formed in earlier times. It wasn't until the 20th century that animation truly became a medium for visual storytelling. A French caricaturist and animator, Émile Cole, who is considered the father of animated films, created one of the first fully animated movies, Phantasmagory, in 1908, and the movie featured a whimsical series of drawings that transformed into several characters. His unique technique laid the groundwork for modern animation by mixing humor and also visuals.
जी अनुजा, और ये कहा जा सकता है कि ये वही फिल्म थी जिसने एनिमेशन जिसके एनिमेशन ने कहीं ना कहीं पारंपरिक कला की सीमाओं को तोड़ा, और कला का मतलब ही यही है कि इसमें सारे जो बॉर्डर्स हैं वो ब्लर हो जाते हैं, जहां तक आपकी इमेजिनेशन जाती है आप उस तरह की चीजें क्रिएट कर सकते हैं, और एनिमेशन ने हमें एक नए तरह के मीडिया से रूबरू करवाया. अनुजा, एक एनिमेशन का भाषा से संबंध नहीं होता, तो ऐसे में एक जगह की एनिमेशन आर्ट दूसरे जगह पर पहुंच कर भी सेम वही मैसेज देगी.
Absolutely right, Sir Firozi. And yesterday, Prime Minister Narendra Modi, while sharing his thoughts with the people of the country and abroad in Mann Ki Baat program, also highlighted that India is on the way to ushering in a new revolution in the world of animation. He urged people to resolve to make India a global animation powerhouse.
Animation ki duniya mein, made in India aur made by Indians chhaya hua hai. Spider-Man ho ya Transformers. इन दोनों मूवीज में हरिनारायण राजीव के कंट्रीब्यूशन को लोगों ने खूब सराहा है. भारत के एनिमेशन स्टूडियो डिज्नी और वार्नर ब्रदर्स जैसी दुनिया के जाने माने प्रोडक्शन कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं.
और श्री मोदी ने इस दौरान छोटा भीम, ढोलकपुर का ढोल, और कृष्णा, हनुमान और मोटू पतली जैसे दूसरे एनिमेटेड शोज का भी जिक्र किया अनुजा, जिनके बारे में सुनकर हम भी उस वक्त में पहुंच गए जब हम लोग भी टीवी के सामने हनुमान सीरियल देखने के लिए बैठ जाया करते थे.
राइट.
Right. और प्रधानमंत्री ने खुशी जताई कि इन शोज की पूरी दुनिया में फैन फॉलोइंग है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्मार्टफोन से लेकर सिनेमा स्क्रीन्स तक और गेमिंग कंसोल से लेकर वर्चुअल रियलिटी तक एनिमेशन हर जगह फैला हुआ है।
Yes, he also observed that the gaming space of India is also expanding rapidly and Indian games are gaining popularity all over the world. He was happy to share that today India's talent is also a significant part of foreign productions. He shared that Hari Narayan Rajiv's contribution in Spider-Man and Transformers movies has been highly appreciated by the people all over. And Mr. Modi also exuded pride that nation's youth are creating original Indian content, which reflects glimpses of country's culture. Of course, animation is an in-demand career also these days, Sir Firozi.
Jee.
And that encompasses creative jobs like traditional animators and more technical career paths like medical animators and engineers.
और अनुजी, हम कह सकते हैं कि animation में ऐसे लोगों के लिए एक career का अच्छा option है जो academics में बहुत अच्छा perform नहीं कर पाते पर उनका दिमाग बहुत creative होता है.
Right. So cartoons are so captivating because they are fun, engaging and most of all very colorful. So if anybody wants to go for animation as its culture, we can always go for it. And it's quite inspiring and also very creative artwork.
और देखा जाए तो अनुजा, भारत ने भी एनिमेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल कर रहा है. कई सारे अंतर्राष्ट्रीय शोज जो हैं वो भारतीय स्टूडियोज के सहयोग से VFX तैयार कर रहे हैं.
Yes, and with the momentum of the industry, it has gained in current times, it has become imperative to develop a support ecosystem for the industry at large and support its growth in India as well. Of course, Asia Pacific is anticipated to hold the largest market share in the gaming industry, with India, Japan, China and South Korea showing high potential for market growth.
और अनुजा, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास हमारे लिए क्या खास जानकारी है. और सबसे पहले चल रहे हैं पटना, जहां लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं. 5 नवंबर को नहाए खाए के साथ 4 दिवसीय इस पर्व की शुरुआत होगी. राज्य भर में विभिन्न नदियों के किनारे छठ घाटों को अंतिम रूप देने का काम जिला प्रशासन और नगर निकायों की ओर से हो रहा है. पेश है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट.
लोक आस्था के 4 दिवसीय महापर्व छठ को लेकर राज्य में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस पर्व में स्वच्छता और शुचिता का विशेष महत्व है. इसे लेकर बड़े स्तर पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है. आम लोगों के अलावा स्वयं सेवी संस्थाएं, नगर निकाय और जिला प्रशासन की ओर से तेज गति से कार्य किए जा रहे हैं. विभिन्न नदी घाटों के किनारे अर्घ्य को लेकर छठ घाट तैयार किए जा रहे हैं. इस बार बाढ़ के कारण कई स्थानों पर पानी उतरने में समय लगा है. इसके चलते छठ घाटों को तैयार करने में परेशानी हो रही है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों जलमार्ग और सड़क मार्ग से छठ घाटों को तैयार करने के कार्य की प्रगति का जायजा लिया. पटना जिले में गंगा नदी का काफी लंबा रिवर फ्रंट है. इस कारण यहां 100 से अधिक छठ घाट शहर में हैं, जहां पटना जिले के अलावा दूर दूर से छठ व्रती पूजा करने आते हैं. पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पार्किंग, सुगम पहुंच पथ और अन्य प्रकार के सभी इंतजाम किए जा रहे हैं.
जहाँ जहाँ अवरोध है संपर्क पथ में, उसको हम लोग हटाने के लिए और ठीक करने के लिए बोले हैं. और मुख्य रूप से आज हम लोग संपर्क पथ और जो पार्किंग की व्यवस्था होगी, बड़ी संख्या में जो गाड़ियाँ आएंगी, जो अटल पथ से गाड़ियाँ आएंगी, उसको हम लोग जेपी सेतु के नीचे से एक रास्ता बनाए हैं, उतारेंगे नीचे और वहाँ पार्किंग की व्यवस्था की गई है. जो 93 नंबर गेट है, अंडर पास है जेपी गंगा पथ के नीचे, उससे जितनी गाड़ियाँ आएंगी उसके लिए भी बगल में पार्किंग बहुत बड़ा स्पेस हम लोगों ने क्रिएट किया है. हम लोगों का प्रयास है कि जो लोग आते हैं छठ व्रती गाड़ियों से अगर आते हैं तो घाट के नजदीक तक पहुंचे और वहाँ पार्किंग में गाड़ी खड़ी करें और उसके बाद अपना घाट पर जो छठ पूजा है उसको करें, संपन्न कराएं. बाकी घाट की तैयारी भी देख रहे हैं, अच्छी है. और घाट इस बार हम लोग देख रहे हैं बहुत अच्छा निकला हुआ. दीघा पाटीपुल घाट भी और जेपी सेतु के पास जो पूर्वी घाट होता है वो भी गेट नंबर 93 का भी, तो बहुत बड़ा घाट है और यहाँ व्यवस्था सब चल रही है. प्रयास यही है कि जो छठ व्रती आए तो उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो.
छठ को लेकर बाजारों में सूप, दौरा और अन्य सामग्रियों की आवक बढ़ गई है. दिवाली के बाद बाजारों में चहल पहल में और तेजी आने की संभावना है. परिक्रमा के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार राय.
एंड नाउ फ्रॉम पटना वी टेक यू ऑल टू कर्सियांग.
जी अनुजा, पश्चिम बंगाल के गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन जीटीए इलाके में एक सप्ताह तक चलने वाला दीपावली उत्सव आरंभ हो गया है और 3 नवंबर को भाई टीका के साथ इसका समापन होगा। सुनते हैं हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
विगत 26 अक्टूबर के दिन दार्जिलिंग के प्रसिद्ध स्थल चौरस्ता में जीटीए प्रशासन व दी हिमाल वर्ल्ड के संयुक्त तत्वाधान में वैली देवसी ग्रैंड फिनाली का आयोजन किया गया। दीपावली के दिन कन्याएं संध्या लक्ष्मी पूजन के पश्चात आसपास के घरों में समूह में जाती हैं तथा माता लक्ष्मी की कृपा परिवार पर बनी रहे इस आशय की मंगल कामना गीतों के माध्यम से करती हैं व घर धन धान्य से भरा रहे ऐसा आशीर्वाद देती हैं। इसी तरह पुरुष दिवाली के दूसरे दिन समूह में पारंपरिक गाजा बाजा के साथ पड़ोस के घरों में जाते हैं तथा भगवान श्री राम की गौरव गाथा गीतों के माध्यम से सुनाते हुए परिवार की सुख शांति व मंगल की कामना करते हैं तथा गीत के हरेक बोल के बाद देव श्री राम कहते हैं, अर्थात हे श्री राम, इस परिवार पर कृपा बनाए रखें, ऐसा आशीर्वाद देते हैं।
आहई भना मेरा भाई हो, आहई भना न संगी, आहई दूसिर भना।
भारत तथा नेपाल के नेपाली समाज का यह सबसे बड़ा व पवित्र पर्व है। दीपावली पर दीपक जलाने से पहले हरेक घर के मुख्य द्वार तथा पूजा स्थल को तांबे के कलश को फूल माला से सजाकर रखा जाता है। देश विदेश के पर्यटकों के लिए नेपाली समाज का यह परंपरागत दीपोत्सव तथा भैली देवसी एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। विगत दिन के दाना समुद्री तूफान के कारण पहाड़ के बाजारों की रौनक थोड़ी फीकी जरूर पड़ी थी, परंतु बाजार में रौनक कल से फिर लौट आई है। तूफान के कारण विगत 2 दिनों तक यहां हल्का वर्षा दिन भर होता रहा, इससे तापमान काफी घट गया है एवं सर्दी का मौसम आरंभ हो गया है। इस सीजन का पहला हिमपात भी नेपाल सीमा से सटे सिंगालीला रेंज में देखने को मिला है। इन दिनों पहाड़ में पर्यटकों की काफी चहल पहल देखी जा रही है। पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए विश्व धरोहर दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे ने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशन घूम से दार्जिलिंग तक अपने जॉय राइड टॉय ट्रेन के और 3 फेरे बढ़ा दिए हैं। परिक्रमा के लिए अशोक चौरसिया, आकाशवाणी कर्शियांग।
और अनुजा, आज से पूरे देश में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इस सप्ताह का विषय है राष्ट्र की समृद्धि के लिए सत्यनिष्ठा की संस्कृति।
यह सप्ताह शासन और जन प्रशासन में पारदर्शिता और नीति की आवश्यकता को लेकर व्यापक संवेदनशीलता सृजित करने के लिए मनाया जाता है। इस सप्ताह की शुरुआत मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और अन्य सभी संस्थानों के कर्मचारियों के शपथ ग्रहण के साथ हुई। इस सप्ताह के दौरान भ्रष्ट कार्य प्रणालियों के विरुद्ध जागरूकता का प्रसार करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती सप्ताह के स्मरण में प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और सतर्कता आयुक्त AS राजीव ने नई दिल्ली के CVC मुख्यालय में अधिकारियों को शपथ दिलाई। आयोग ने नीतियों और सत्यनिष्ठा के महत्व के संबंध में व्यापक जागरूकता सृजित करने और सभी हितधारकों को इसमें शामिल करके सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने के प्रति सतर्कता जागरूकता सप्ताह की प्रतिबद्धता की पुष्टि का उल्लेख किया। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के आकाशवाणी भवन में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर आकाशवाणी की महानिदेशक डॉ. प्रज्ञा पालीवाल गोड ने अधिकारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। परिक्रमा के लिए अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
एंड नाउ वी विल टेक यू ऑन अ टूर ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल एंड रिकॉल इवेंट्स दैट हैपेंड ऑन दिस डे।
भारत माता पूजा विधि तले फूटे छे जैसे
October 28th is the birth anniversary of the revolutionary and social activist Sister Nivedita. Born as Margaret Elizabeth Noble in Ireland on October 28th, 1867, she belonged to a family of revolutionaries. Her grandfather, John Noble, father, Samuel Richmond, and her maternal grandfather, Hamilton, were in the forefront of the Irish freedom struggle.
After completing her college education, she took to teaching for 10 years from 1884 to 1894. Sister Nivedita met Swami Vivekanand in 1895 in London and travelled to Kolkata in 1898. She became Swami Vivekananda's disciple, who gave her the name Nivedita, meaning dedicated to God, when he initiated her into the vow of Brahmacharya on the 25th of March, 1898.
During May to October 1898, Sister Nivedita went on a tour of Almora and Kashmir region, accompanying Swami Vivekananda. In Kashmir, she observed how the British government refused permission to the Maharaja to hand over a piece of land to her guru to set up a mutt and a Sanskrit college. She realized that the emancipation of India could be achieved only by putting an end to the British rule.
In March 1899, when plague raged in Kolkata, Sister Nivedita organized a group of young men and engaged herself in relief operations. She was seen in every slum in Bagh Bazar area with a broom in her hand, cleaning the streets. In the middle of June 1899, Nivedita left for England. Later, she went to America on a lecture tour with a view to raise funds for her school.
During her visit to Boston, she met Bipin Chandrapal. When Sister Nivedita returned to England, she had to face the vile propaganda of British imperialists. But this only kindled the revolutionary spirit in her. In 1902, she came back to India. Upon her arrival in Chennai, she was accorded a grand reception, during which she proclaimed, "The people of India are fully competent, and no outsider has the right to advise or interfere in their affairs."
Her speech won her admiration, but aroused the anger of the British, who blacklisted her. The Nivedita Girls' School in Kolkata, run by her, was a brilliant example to nationalist institutions all over the country. Sister Nivedita refused to take government aid for the school. She introduced Bande Mataram in the daily newspapers of her school at a time when singing of the patriotic song in public was an offence. She also introduced Swadeshi and the spinning wheel in the school.
In 1902, when Viceroy Lord Curzon appointed the University Commission to strangulate the national education system, Sister Nivedita came to the forefront. In protest against the move from 1906 to 1907, she remained busy with her journalistic work.
Besides writing editorials for the publication Prabuddh Bharat, she was also contributing to journals like Sandhya, The Dawn and New India. In 1907, she left for England to set a favourable atmosphere for the Indian independence through meetings and interviews with British parliamentarians and writings in English journals. Sister Nivedita organized the publication of revolutionary journals from outside India and arranged for their secret distribution in India. She also organized Indian revolutionaries scattered abroad.
When Sister Nivedita returned to India in 1909, most of her associates were in jails. She passed away on 13th October 1911 at the age of 43 in Darjeeling. Her memorial is located on the way to Victoria Falls of Darjeeling with these words inscribed in her epitaph. Here lies Sister Nivedita, who gave her all to India. And now coming to the business news of the day, the domestic benchmark indices today ended on a positive note, snapping their five-day losing streak. The BSE Sensex jumped 603 points or 0.76% to close at 80,005, while the NSE Nifty advanced 158 points or 0.65% to settle at 24,339. In the global crude market, Brent crude was trading nearly 6% down at $71.51 per barrel, and WTI crude tumbled over 6% to trade at $67.31 per barrel when reports last came in. In the Indian bullion market, the 24-carat gold was trading down at 78,360 rupees per 10 grams. Silver 999 fine is also trading down at 96,650 per 1 kilogram when reports last came in.
और श्रोताओं, अब बाद खेल जगत की खबरों की, तो कुश्ती में भारत के पहलवान चिराग ने अल्बानिया के तिराना में अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने कल रात पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल श्रेणी में किर्गिस्तान के अब्दी मलिक कराचोव को 4-3 से हराया। भारतीय पहलवानों ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 9 पदक हासिल किए हैं। और श्रोताओं, अब समय है उन खास हस्तियों को याद करने का जिनकी आज ही पुण्यतिथि या जन्मदिवस है। तो अनुजा, सबसे पहले किसे याद कर रहे हैं हम?
यस, वी फर्स्ट पे ट्रिब्यूट टू अ हिंदी राइटर नोटेबल फॉर हिज सटायर नेम्ड श्री लाल शुक्ल। ही वर्कड एज अ पीसीएस ऑफिसर फॉर द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड लेटर इंडक्टेड इनटू द आईएएस। ही हैज रिटन ओवर 25 बुक्स इंक्लूडिंग राग दरबारी, मकान, सूनी घाटी का सूरज, पहला पड़ाव एंड विश्रामपुर का संत। शुक्ला हैज हाईलाइटेड द फॉलोइंग मॉरल वैल्यूज इन द इंडियन सोसाइटी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा थ्रू हिज नॉवेल्स। हिज राइटिंग्स एक्सपोज द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन रूरल एंड अर्बन इंडिया इन अ सटायरिकल मैनर। हिज बेस्ट नोन वर्क राग दरबारी हैज बीन ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश एंड 15 अदर इंडियन लैंग्वेजेस। देर वॉज, इफ यू रिमेंबर सर फिरोजी, देर वॉज अ टेलीविजन सीरियल ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस विच कंटिन्यूड फॉर सेवरल मंथ्स ऑन द नेशनल नेटवर्क इन द 1980s. Maybe you were not even born at that time. But I do remember watching it. And if we talk about the awards, Shukla received the Gyanpith Award in 2011, and his first major award was the Sahitya Academy Award for his novel Raag Darbari in 1969. He received the Vyas Samman Award in 1999 for the novel Bisrampur Ka Sant. And in 2008, he was awarded the Padma Bhushan for his contribution to Indian literature and culture.
और आज ही पुण्यतिथि है राजेंद्र यादव की। ये सुप्रसिद्ध उपन्यासकार थे। इसके अलावा इनकी कहानी, कविता और आलोचना सहित साहित्य की कई विधाओं पर समान पकड़ थी। कविता से लेखन की शुरुआत करने वाले हंस के संपादक राजेंद्र यादव ने दलित और नारी विमर्श को हिंदी साहित्य जगत में चर्चा का मुख्य विषय बनाया, और इन्हीं सब खूबियों के लिए इन्हें हिंदी साहित्य का द ग्रेट शो मैन भी कहा जाता है। और आज जन्मदिवस है अनजान का। ये हिंदी फिल्मों के मशहूर गीतकार और अपने समय के ख्याति प्राप्त शायर थे। इनका असली नाम लालजी पांडे है। अनजान के लिखे हुए गीत आज भी लोगों की जुबां पर चढ़े हुए हैं। और अनुजा, एक गाना है इनका जो मुझे याद आ रहा है, जो हमेशा हमें अपने बुरे वक्त में भी अच्छे की उम्मीद करने की आशा देता है।
रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन।
In fact, Anjan got his first break with the 1953 Premnath production Prisoner of Golconda, but he was first noticed for his work with the Rajkumar film Godan, based on Premchand classic with music by Ravi Shankar. And in the 1980s, he even emerged as the writers of choice for Mithun Chakravarti's films like Disco Dancer and Dance Dance, and he struck a gold mine in the films of Bappi Lahari. Anjan was very successful all-rounder for almost 20 years in Hindi films, but his poetry still had the color of Bhojpuri language and the ethos and culture of Uttar Pradesh, which is the citadel of Hindi, and that is why he could write this song.
छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, भाई के पहन बनो रसवाला, खुली।
आज माधवन कृष्ण नायर की पुण्यतिथि है। ये प्रख्यात ऑन्कोलॉजिस्ट और क्षेत्रीय कैंसर केंद्र के संस्थापक निदेशक थे। इन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कैंसर पर विशेषज्ञ सलाहकार पैनल में भी काम किया था। भारत सरकार ने माधवन कृष्ण नायर को 2001 में चिकित्सा के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इजाजत दीजिए सरफिरोजी और अनुजा कुमार को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की।
Yes, if you want to listen to this again, you can log on to newsonair.gov.in or use the mobile app News on AIR. So till then,
namaskar.